क्या प्रवचन पांच पांच एक इष्ट देव में दिया गया हर एक
नायम देह देह भाजन लोके
नायम देह देह भाजन लोके
कस्तन कामन तुद भुजंगे
कस्तन कामन अर्थ देव भुजंगे
तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्वम
तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्वम
चुनिए दुष्मानुर सोक्यम अनंतम
देख सुमानुरम सोक्यम
शब्दार्थ
ऋषभ उवाच
भगवान
ऋषभ ने कहा
ना
नहीं
आयम
यह
देह
शरीर
देह
भाजाम
समस्त
देहधारियों का
निर्लोके
इस संसार में कष्टान
कष्टकारक
कामान इंद्रिय तृप्ति विषय
अर्हते
चाहिए
ऋत
भोजाम
विष्टा
खाने वालों का ये
जो
तपः
तपस्या
दिव्य
दिव्य
पुत्र का
हे
पुत्रों
ये
न
जिसके द्वारा
सत्वम
हृदय
शुद्धेता
पवित्र होता
है
यस्मात्
जिससे
ब्रह्म
सौख्यम
ब्रह्मानंद
तो
निश्चय ही
अनंतम
अनंत
अनुवाद भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों से कहा हे पुत्रों इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसे मनुष्य देह प्राप्त हुई है उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए ही अहर्निश कठिन श्रम नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा तो विष्टाभोजी कूकर सूकर भी कर लेते हैं बल्कि मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए वह अपने को तपस्या में लगाए ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त होता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है जो दिव्य है और कभी भी ना अंत होने वाला है तात्पर्य इस श्लोक में भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को मनुष्य जीवन की महत्ता बताते हैं देहभाग शब्द से यह भौतिक देह धारण करने वाले का बोध होता है किंतु जिस जीवात्मा को मनुष्य देह प्राप्त होती है उसे पशुओं से भिन्न आचरण करना होता है कूकर तथा सूकर मल खाकर इंद्र तृप्ति कर लेते हैं दिन भर अथक परिश्रम करने के बाद मनुष्य भी रात्रि के समय खा पीकर संभोग और शयन चाहते हैं किंतु इसके साथ ही उन्हें अपनी रक्षा भी करनी होती है किंतु यह कोई मानव सभ्यता नहीं मनुष्य जीवन का अर्थ है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए कष्ट सहना निसंदेह पशुओं तथा वृक्षों को भी अपने दुष्कर्मों के कारण कष्ट भोगने पड़ते हैं किंतु मनुष्य को स्वेच्छा से दिव्य जीवन की प्राप्ति के लिए तपस्या के रूप में कष्टों को अंगीकार करना चाहिए दिव्य जीवन प्राप्त करने के अनंतर उसे शाश्वत आनंद प्राप्त हो सकेगा मुख्य बात तो यह है कि प्रत्येक जीवात्मा सुखोपभोग चाहती है किंतु जब तक वह इस देह में बंदी है उसे विभिन्न प्रकार के कष्ट झेलने होते हैं मनुष्य में उच्चतर ज्ञान पाया जाता है हमें चाहिए कि हम गुरुजनों के उपदेश के अनुसार कार्य करें जिसमें शाश्वत सुख प्राप्त हो और भगवान के धाम जा सके
स्वपदान्विकं वन्देहं
तो ये श्रीमद् भागवतम का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। आप में से कितने भक्तों ने इस श्लोक को कंठस्थ किया हुआ है? कंठस्थ नहीं किया तो करने का प्रयास कीजिए। भक्तों की रुचि रहती है प्रसिद्ध भक्त श्लोकों का कंठ को कंठस्थ करने के लिए। तो ये श्लोक का उच्चारण भगवान ऋषभदेव जी कर रहे हैं। ऋषभ शब्द का संस्कृत में अर्थ है सबसे प्रसिद्ध, और भगवान के अनेक अवतार हैं। भगवान के अवतारों के कई विभाग हैं, जैसे पुरुषावतार, लीला अवतार, गुना अवतार, मनोतार अवतार, युगावतार, शक्तिवेश अवतार। जैसे आज जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन, आप जानते हो क्रिसमस का मतलब है जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन। और जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा बाइबल में? आई एम सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ। और प्रभुपाद जी ने कहा है कि जीसस क्राइस्ट एक शक्तिवेश अवतार। शक्तिवेश अवतार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है जो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, दूसरा जब वो किसी भक्त को जिम्मेदारी देते हैं कुछ शुभ कार्य करने के लिए, जैसे जीसस क्राइस्ट ने क्रिश्चियनिटी की स्थापना की। तो भगवान ऋषभदेव भगवान के अवतार हैं। ऋषभ का अर्थ है सबसे प्रसिद्ध। और भगवान के अवतारों का वर्णन हमें शास्त्र में प्राप्त होता है। आज ये शब्द अवतार बड़ा प्रसिद्ध हो गया है। अब जानते हो क्यों? क्यों?
बहुत सारे अवतार घूम रहे
हैं। अच्छा, एक अवतार है, बहुत से अवतार घूम रहे हैं।
हॉलीवुड
मूवी, किसने कहा? एक हॉलीवुड के प्रोड्यूसर ने $250 million खर्च कर एक सिनेमा बनाया जिसका नाम था अवतार। वो फिल्म बड़ी सुपरहिट थी। हालांकि जिन्होंने देखा उन्होंने मुझे कहा है इसका कृष्णा से मेरे शास्त्र में कोई संबंध नहीं था, पर किसी प्रकार भगवान ने उनको प्रेरणा दी, अवतार नाम दे दिया। आज अवतार नाम लगभग सब जानते हैं सारे विश्व में। तो अवतार का अर्थ है जो कि आध्यात्मिक जगत से प्रकट होता है। और भगवान के अनेक अवतार हैं जिनका वर्णन आप वैदिक शास्त्रों में प्राप्त करते हो, जिनमें से एक है ऋषभदेव। तो भगवान ऋषभदेव के पिता का नाम था महाराज नाभि, उनकी माता का नाम था मेरु देवी। जब भगवान प्रकट होते हैं अपने भक्तों को माता पिता के रूप में भी स्वीकार करते हैं। जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे पृथ्वी पर, तो उन्होंने वासुदेव देव की को माता पिता के रूप में स्वीकार किया था। पर वासुदेव देवकी ने बहुत भारी तपस्या की थी, 10,000 देवताओं के वर्षों के लिए कुछ नहीं खाया उन्होंने, केवल जल और पत्ते जो पेड़ों से गिरते थे और ताजी हवा, बस उनका दिन रात एक ही भाव का चिंतन था, हमें परम भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो। और देवताओं के हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर होते हैं, तो अंदाजा लगाओ देवताओं के 10,000 सालों के लिए उनका निरंतर चिंतन था कि हमें परम भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो। उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, फिर भगवान ने उन्हें माता पिता के रूप में स्वीकार किया। तो उसी प्रकार भगवान की प्रशंसा के लिए महाराज नाभि और मेरु देवी एक यज्ञ कर रहे थे इस भावना के साथ कि हमें भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में। भगवान उनके यज्ञ से बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने प्रकट होकर कहा कि अगर तुम चाहते हो कि मेरे जैसा कोई बेटा तुम्हारा पैदा हो, ये तो असंभव है। भगवान जैसा कोई हो सकता है? मैं ही तुम्हारा बेटा बन जाता हूं। और भगवान बेटे बन गए और प्रकट हुए ऋषभदेव जी के रूप में। ऋषभदेव के 100 पुत्र थे। अब 100 भगवान ने क्या असंभव, भगवान ने कोई कार्य असंभव नहीं है। तो उनके 100 पुत्र थे। भगवान जो गीता में कहते हैं अहम बीजा प्रदा पिता, मैं हूं सब योनियों का पिता। तो महाराज ऋषभदेव ने सोचा ये मेरी जिम्मेदारी बनती है क्या कि मैं अपने पुत्रों को दिव्य ज्ञान दूं। भगवान ऋषभदेव जी ने भागवत में कहा है इसी अध्याय में कि व्यक्ति को माता नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपनी औलाद का उद्धार नहीं कर सके। व्यक्ति को गुरु नहीं बनना चाहिए जब तक वो अपने शिष्य को दिव्य ज्ञान प्रदान नहीं कर पाए। तो ये जो श्लोक है इस 5वें अध्याय में भगवतम के अनेक प्रसिद्ध श्लोक हैं। प्रभुपाद जी अनेक समय इन श्लोकों पर प्रवचन देते थे। तो हर श्लोक इस अध्याय का बड़ा महत्वपूर्ण है और प्रभावशाली है। वैसे तो श्रीमद् भागवतम को सबसे ऊंचा ग्रंथ माना जाता है, निगाहों का तो करोड़ कलितम फलम। और कहा गया है भागवतम के आलम में कि ये सबसे पक्का हुआ फल है और ये फल आ रहा है गुरु परंपरा के द्वारा। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर कोई पेड़ के छोटी से फल फेंके तो नीचे पहुंचेगा टुकड़े टुकड़े, पर अगर अलग अलग व्यक्तियों द्वारा नीचे पहुंचाया जाए तो यथारूप प्राप्त होगा, है कि नहीं? तो इसी प्रकार हमारा सौभाग्य है कि हमें यह ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो भगवान ऋषभदेव जी का जो ज्ञान है, उपदेश है, बड़ा महत्वपूर्ण है पूरे मानव समाज के लिए। श्रीमद् भागवतम की रचना शुकदेव गोस्वामी ने की थी और परीक्षित महाराज पृथ्वी के सम्राट थे। उन्हें ब्राह्मण लड़के ने श्राप दिया था कि 7 दिन के पश्चात तुम्हारा अंत आ जाएगा, और अगर परीक्षित महाराज चाहते तो इसका विरोध कर सकते थे। वो शुरू से ही आत्मज्ञानी थे, भगवान ने उनकी सुरक्षा की थी जब वो अपनी माता के घर में थे। पर भगवान की हार्दिक इच्छा थी ये श्रीमद् भागवतम बोला जाए, किस लिए? कलियुग की प्रजा के उद्धार के लिए। तो कहीं श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं और हर श्लोक का इतना गहरा अर्थ है कि अगर आप एक श्लोक को भी ध्यान से पढ़ोगे और चिंतन करोगे आपका जीवन सफल हो पाएगा और आपको खुशी भी जानकर यह श्रीमद् भागवतम आज 70 से अधिक भाषा में प्राप्त है। बहुत ही जल्द श्रीमद् भागवतम 9 स्कंद तक चाइनीज भाषा में प्रकाशित हो गया। तो ये श्रीमद् भागवत का जो उपदेश है बड़ा महत्वपूर्ण है। आप में से कितने भक्त जो भागवतम दो रोज पढ़ते हो? तो इस श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान ऋषभदेव? सबसे पहले कह रहे हैं, हे मेरे प्रिय पुत्र, ये मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है उसका ये लक्ष्य नहीं कि आप दिन रात पशु के समान कार्य करो इंद्रिय तृप्ति के लिए, पर इसका ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम इस देह के द्वारा तपस्या का पालन करें, किस लिए? भक्ति योग में जुड़ने के लिए। दूसरे शब्दों में भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं, अब यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इसका दुरुपयोग मत करो। जैसे कि वेदांत सूत्र के आरंभ में कहा गया है, अर्थात ब्रह्मा जिज्ञासा, अब यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इसका दुरुपयोग मत करो पर सदुपयोग करो। आज समाज में कितने लोग हैं जो ये समझ पाते हैं कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है? आप कॉलेज में पढ़ते हो, स्कूल कॉलेज में अपने विद्यार्थी साथियों से पूछो, आज कितने लोग इस विषय में रुचि लेते हैं? प्रभुपाद जी एक समय अमेरिका के बड़े प्रसिद्ध महाविद्यालय में उपदेश दे रहे थे, जहाँ प्रभुपाद जी ने एक प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा, ये अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध महाविद्यालय है, यहाँ कोई ऐसा अंग है जहाँ शिक्षा दी जाती है कि मृत्यु के बाद व्यक्ति कहाँ जाता है? हम अज्ञानता में जन्म लेते हैं, जैसे कि उपदेश देने से पहले अक्सर एक मंत्र का उच्चारण करता है जो इस प्रकार से है, ओम ज्ञान तिमरंदसा। हमारा जन्म हुआ था अज्ञानता के वातावरण में, सच बात है। जब वह पैदा हुए थे अब लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, बोलना नहीं जानते थे, पर आस्ते आस्ते आप स्कूल में गए, नर्सरी में गए, कॉलेज में गए, फिर आपने अलग अलग प्रकार का भौतिक ज्ञान प्राप्त किया। उसी प्रकार हम अज्ञानता में हैं हमारे स्वरूप के विषय में, हम हैं कौन, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, इन प्रश्न होता कोई पूछता है? चैतन्य चरितमृत में आप पढ़ते हो कि रूप और सनातन गोस्वामी जो कि एक मुसलमान राजा नवाब हुसैन शाह के राज्य पे शासन कर रहे थे, वो चैतन्य महाप्रभु जी को मिले राम अकेली, वो आज बांग्लादेश में। उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा, समाज में लोग हमें बड़ा विद्वान मानते हैं पर हम ये नहीं जानते हम हैं कौन, क्या में कौन है हम, तो कौन हो आप? ये ज्ञान शास्त्र द्वारा प्राप्त होता है। जैसे कि कल और परसों दो दिन हमने गीता जयंती मनाई, कई स्थानों में कल मनाई है, कल कई स्थानों में परसों, तो गीता जयंती के उपलक्ष हम गीता के शुद्ध संदेश पर विचार करते हैं। और गीता का शुद्ध संदेश क्या है? सर्वधर्म परित्यज्या मामे कंचन। गीता समझना है तो हमें विनम्रता के भाव से समझना चाहिए और गीता द्वारा हमारी अज्ञानता दूर होती है। दूसरे अध्याय में अर्जुन ने कहा, मुझे ये नहीं समझ आ रहा मैं क्या कर्तव्य होना चाहिए, आप शिक्षा दीजिए। भगवान ने शिक्षा देना आरंभ किया। 18वें अध्याय में पूछा, क्या तुम्हारी अज्ञानता दूर हो गई है? अर्जुन ने कहा, हाँ। भगवान ने कहा, करो जैसे ठीक लग रहे। तो भगवान स्वयं प्रकट होते हैं और शास्त्र के माध्यम से, शास्त्र का अर्थ है भगवान की वाणी, शास्त्र के माध्यम से भगवान हमें सूचना दे रहे हैं कि किस प्रकार से हमें इस जीवन को बिताना चाहिए। तो इस प्रश्न को ऋषभदेव जी कह रहे हैं ये जो मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है इसको पशुओं के समान उपयोग मत करो। हम सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति जीवन का लक्ष्य है, पर इंद्रिय तृप्ति जैसा आप जानते हो पशु भी बड़ी सरलता से जुड़ पाते हैं इस कार्य में। ये नहीं कि पशुओं को स्कूल में जाना पड़ता है सीखने के लिए इंद्रिय तृप्ति के साधन। तो कृष्णदेव जी कह रहे हैं अगर तुम मनुष्य जीवन प्राप्त करके केवल इंद्रिय तृप्ति का भाव रखोगे तो ये मूर्खपन है। तो आप पूछोगे फिर मनुष्य जीवन प्राप्त करने पर हमें क्या करना चाहिए? वो कहते हैं तपस्या का पालन करो भक्ति में सफलता प्राप्त करने के लिए। गीता के 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं तीन चीजों को मत त्यागो कभी भी। क्या है वो तीन चीजें? यज्ञ, दान और तपस्या। भगवान कहते हैं जो आत्मज्ञानी व्यक्ति हैं उन्हें भी ये तीन कार्य नहीं त्यागने चाहिए। क्या? यज्ञ, दान, तपस्या। यज्ञ का अर्थ है भगवत प्राप्ति का साधन। जिस प्रकार अलग अलग बीमारी का अलग अलग इलाज है उसी प्रकार अलग अलग युग में अलग अलग यज्ञ के साधन हैं। उदाहरण के लिए सतयुग में पूरा समाज का चिंतन था भगवान में और भगवान में भगवत प्राप्ति का साधन था भगवान का चिंतन करना। लोगों की अवधि थी सतयुग में 1,00,000 साल। त्रेते युग में अवधि 10 गुना कम हो जाती है 10,000 साल। और भगवत प्राप्ति का साधन क्या था? यज्ञ, जिसमें शुद्ध ब्राह्मण होते थे। ये जो शुद्ध ब्राह्मण थे वो मंत्र का उच्चारण वो अग्नि को जलाते थे मंत्र के उच्चारण से, यानी मैच बॉक्स के द्वारा। और हर यज्ञ में शुद्ध वस्तुओं को अर्पण किया जाता था, शुद्ध दूध की इत्यादि। फिर वो भी संभव नहीं है। अगर आप भगवान का चिंतन करना चाहो कहाँ जाओगे? आज बाहर के चोटी में जाओगे को वहां भी हवाई जहाज उड़ते हैं ऊपर से। फिर आया त्रेता युग में यज्ञ। अगर आप हम बोले रोज यज्ञ कीजिए अपने घर में 1 लीटर दूध आधा पाउंड मक्खन वगैरह, आप कहोगे स्वामी जी मुश्किल से घर का खर्चा चलता है ये ऊपर से और बोझा हो जाए। और यज्ञ करोगे तो आपके पड़ोसी पुलिस वालों को भी बुला रहे। फिर आया द्वापरयुग। द्वापरयुग में लोगों की अवधि और 10 गुना कम हो जाती है। और द्वापरयुग में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? भेंट अर्पण करना। और फिर आया कलयुग जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की अवधि है 100। और ध्यान से देखा जाए 40 साल के बाद लगभग डॉक्टर दर्शन शुरू हो जाता है। और तो इस कली के भगवान ने यज्ञ का क्या साधन दिया है? दाना। दाना करते धान देना। तो कल रात को मैं किसी के घर गया था हमारे जीवन सदस्य, तो पूछ रहे थे क्या ज्यादा ऊंचा है, धान देना गरीबों को या धर्म का प्रचार करना? तो दाना, जब दान का उपयोग दान शब्द का वर्णन करते हैं तो हम सोचते हैं गरीबों को दान दे दो, हॉस्पिटल खोल दो, भौतिक शिक्षा दे दो। मान लो आपने किसी का इलाज करवा दिया हॉस्पिटल में और उनका स्वास्थ्य फिर से ठीक हो गया, अगर ठीक होकर आंखों को ठीक करके वो व्यक्ति फिर से पाप का कार्य करेगा तो आपने उसका सहयोग दिया है या उसे और फंसा दिया है? जब आप शास्त्र के विपरीत कार्य करते हो तो वो एक रूप से आप कर्जा ले रहे हो, वो भरना पड़ेगा आज नहीं तो करो। तो सबसे ऊंचा दान है ज्ञान का दान, जैसे कि इस्कॉन के भक्तों के द्वारा ये प्रयास किया जाता है कि प्रचार हो, ग्रंथों का वितरण हो। क्यों? क्योंकि इन ग्रंथों में यह भगवान की वाणी, श्री भगवान वाचा, परम भगवान बोल रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं क्या? उपदेश, किसके लिए? मानव समाज के लिए। तो सबसे ऊंचा दान है ज्ञान का दान। इसीलिए गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं सब भक्तों में, ऐसे तो सारे भक्त भगवान के प्रिय हैं। जो झाड़ू देता है मंदिर में वो भी प्रिय है, फिर रसोई बनाता है वो भी प्रिय है, जो भगवान में श्रृंगार करता है वो भी प्रिय है, जो प्रसाद बनाता है, हार बनाता है, वो भी प्रिय है। सब भगवान इतने भारी हैं कि कोई तुच्छ सेवा भी करे उसके वो भारी हो जाते हैं। पर सब भक्तों में सबसे प्रिय कौन है? भगवान गीता में क्या कहते हैं? उसे ज्यादा प्रिय ना जो हुआ है ना होगा। क्यों? क्योंकि परम भगवान की इच्छा है कि सारे बच्चे उनके धाम में लौटे। इसी अध्याय में भगवान ऋषभदेव एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। भगवान ऋषभदेव कहते हैं एक बुद्धिमान व्यक्ति जब किसी अंधे व्यक्ति को गलत रास्ते में चलते हुए देखता है तो क्या करता है? उसके हाथ को पकड़कर उसे सीधे रास्ते में जोड़ देता है। उसी प्रकार भगवान ऋषभदेव जी कहते हैं जिन व्यक्ति के पास आध्यात्मिक ज्ञान है, जब वो देखते हैं कि पंजीव गलत रास्ते में चल रहे हैं तो क्या करते हैं? उनको पकड़कर सीधे रास्ते में जोड़ते हैं। श्री प्रभुपाद जी को जैसे आप जानते हो, उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था कि ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देश में। प्रभुपाद जी ने पहले भारत में बहुत प्रयास किया, आपकी दिल्ली में भी बड़ा प्रयास किया, पूरी सफलता प्राप्त नहीं हुई, लोगों ने सहयोग नहीं दिया। पर जब भी प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था कि जो चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी है, चैतन्य महाप्रभु जी जैसे आप जानते हो स्वयं भगवान है, उनकी भविष्यवाणी थी क्या? पृथ्वी आते जत नगर अधिगम सर्वदा प्रचार गुणगाम, विश्व में जितने नगर गांव है हर जगह यह हरिनाम पहुंचेगा। तो प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था उनके गुरु महाराज के आदेश में, और वो प्रयास करते गए। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए, सारे विश्व में एक भक्त नहीं था इस्कॉन का, इस्कॉन संस्था भी थी, फिर उन्होंने इस्कॉन संस्था की स्थापना की। फिर श्री प्रभुपाद जी ने प्रचार करना आरम्भ किया। न्यूयॉर्क में एक बड़ा प्रसिद्ध पार्क है जिसका नाम है थॉमकिन स्क्वेयर पार्क, और अगर प्रभुपाद जी उस पार्क में जाते थे एक पेड़ के नीचे बैठकर एक मृदंग ढोलकी ले गए थे भारत से, उसे बजाकर हरे कृष्ण कीर्तन करना उन्होंने शुरू किया। आस्ते आस्ते लोग जुड़ते गए और आस्ते आस्ते यह आंदोलन विश्व के हर कोने में पहुंच गया। पर कैसे पहुंचे? प्रचार के माध्यम से। आज अगर आप थॉमकिन स्क्वेयर पार्क में जाओ तो वहाँ जिस पेड़ के नीचे प्रभुपाद जी ने संस्था आरम्भ की, एक सरकार ने प्लैक लगा दिया है, उस प्लैक में लिखा है दिस इज द प्लेस, दिस इज द ट्री अंडर विच द फाउंडर, द फाउंडर द हरे कृष्ण मूवमेंट। तो कहने का तात्पर्य यह है प्रचार के माध्यम से आपके ईस्ट दिल्ली में भी आज कई सौ भक्त हैं, एक समय कोई भी नहीं था, है ना, एक थे दो थे। तो इसी प्रकार आप खुद देख सकते हो कि जब हम दान प्रचार करते हैं तो लोग जुड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अनेक व्यक्ति ये स्वीकार करते हैं कि हमें कोई दूसरा उपाय चाहिए, बहुत एक संसार में क्या क्लेश ही क्लेश है। और साधु के संग में आने से उनके हृदय में आध्यात्मिक जागृति उत्पन्न होती है। तो यज्ञ, दाना और तपस्या। तपस्या से कई बार हम डरते हैं, अनेक धर्म के प्रचारक हैं वो तपस्या शब्द का उपयोग नहीं करते। तपस्या का अर्थ है उन कार्यों को त्यागना जो कि भक्ति के लिए प्रतिकूल है और उन्हें स्वीकार करना जो भक्ति के लिए अनुकूल है। जैसे कि साधारण स्थिति में अगर कोई कार्य या कोई भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए बुरा है तो आप उसे खाते हो नहीं खाते। तो उसी प्रकार क्योंकि हमारा लक्ष्य भगवत प्राप्ति, अगर वो कार्य प्रतिकूल है तो हमें क्या उसे त्याग देना चाहिए। तो तपस्या का यह अर्थ नहीं कि आप भोजन ही खाओ या काम अपना व्यापार छोड़ो खाना छोड़ो, नहीं, आप केवल उन कार्यों में त्याग हो जो कि भक्ति के लिए प्रतिकूल है। चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे किस प्रकार भगवान के शरणागत हम हो सकते हैं, और इस विषय में उन्होंने सबसे पहले कहा एक्सेप्ट व्हाट इज फेवरेबल एंड रिजेक्ट व्हाट इज अनफेवरेबल, स्वीकार करो जो अनुकूल कार्य है और जो प्रतिकूल है उसे त्याग। तो भगवान ऋषभदेव जी कह रहे हैं तपस्या करो पर किसके लिए, भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए। एक रूप से भौतिक समाज में हम सबको जबरदस्ती तपस्या करनी पड़ती है। आज भारत के कई शहरों में आप बाहर एक मिनट लग खड़े हो, इतनी बदबू आती है, इतनी गंध है, आपको सहना पड़ता है। महंगाई के जमाने में कहीं पर दो दो तीन तीन नौकरी करनी पड़ती है, ये भी तपस्या है। मैं एक व्यक्ति को मिला था वॉशिंगटन में, तो आध्यात्मिक चर्चा कर रहे थे, कहने लगा समझ में क्या करें, मुझे तीन नौकरी करनी पड़ती है रोज, घर का खर्चा निकालना है, तो वो भी तपस्या है। पर यहाँ भगवान कह रहे हैं तपस्या करो जिसके द्वारा अब आध्यात्मिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सको। जैसे कि जीव की तपस्या, जीव की तपस्या का वर्णन भगवान करते हैं, क्या है जीव की तपस्या, सत्यता का उच्चारण करो, वैदिक शास्त्रों की रचना करो, भगवान के नामों का उच्चारण करो, तो आपको ये तपस्या क्यों है, क्योंकि हमें आदत है जीव के द्वारा क्या करना, भौतिक चर्चा करना, फिर जल्प करना, उस विषय की कथा करना जिसका भगवान से कोई संबंध नहीं है। और जब आप कहते नहीं हमें जीव द्वारा भगवान के नामों का उच्चारण करना है, जीव द्वारा हम भगवत गीता के संदेश की रचना करेंगे, तो वो है जीव का सदुपयोग। उसी प्रकार मन, मन का अभ्यास है भौतिक विषयों का स्मरण करना, पर जब आप भक्ति में जुड़ते हो अब ये सीखते हो कि मन द्वारा हमें क्या करना चाहिए, भगवान के दिव्य कार्यकलापों का, भगवान की लीलाओं का, भगवान के उपदेश का, भगवान के गुणों का की चर्चा करने के लिए। और शरीर, शरीर के द्वारा हम अक्सर अज्ञानता की स्थिति में यही सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, और सुबह से रात तक हम व्यस्त रहते हैं इन भौतिक कार्यों में। पर जब आप भक्ति में जुड़ते हो आपसे क्या ये समझ आती है, क्या ये शरीर का हमें उपयोग करना चाहिए, किस लिए, भगवान की सेवा में। और हमारे भक्तों ने उदाहरण दिया, जैसे अमृत महाराज, वो अपने नेत्रों का उपयोग करते थे भगवान का सुंदर विग्रह का दर्शन प्राप्त करने के लिए। और आज आपको पता होगा इसका के कई मंदिरों का दर्शन आप इंटरनेट द्वारा प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर आप नेत्रों द्वारा अपने घर बैठे बैठे मायापुर धाम का दर्शन करना चाहो या कृष्ण बलराम का दर्शन करना चाहो या लंदन, हमारे एक भक्त वेदव्यास मुझे को कह रहे थे गीता जयंती वाले दिन उन्होंने लंदन में जो गीता जयंती का यज्ञ हो रहा था वो भी देखा और लेक्चर सुना। तो भक्ति सिद्धांत जी कहते थे हमारे परम गुरु जी, भौतिकवादी व्यक्ति टेक्नोलॉजी बनाते हैं और भक्त से उपयोग करते हैं भगवान की सेवा। तो आज इंटरनेट द्वारा अब इस्कॉन के कई शहरों के लेक्चर सुन सकते हो, कई मूर्तियों में दर्शन प्राप्त कर सकते हो। तो नेत्रों का उपयोग करो क्या करने के लिए? अमृत महाल ने पैरों का उपयोग किया किस लिए? तो आप अपने पैरों का उपयोग करो किस लिए? भगवान के मंदिर पहुंचने के लिए, चाहे पैदल हो या साइकिल या रिक्शा या मोटर। हाथ का उपयोग किया भगवान के मंदिर को साफ करने। जब आप आगे मंदिर को साफ करते हो, भक्ति सिद्धांत जी कह रहे थे इस विषय में कि इसकी तुलना की जाती है हृदय को साफ करने के बराबर। हृदय हमारा क्या है? मैला है। आप सिखों में देखते हो एक बड़ा अच्छा गुण कि जब वो गुरुद्वारा जाते हैं उन्हें भावना होती है विनम्रता की सेवा करने की, खुद सेवा है ना, ये नहीं साफ की सेवा। तो इसी प्रकार हाथों द्वारा हमें क्या करना चाहिए? भगवान के मंदिर को साफ करना चाहिए। जब प्रभुपाद जी किसी मंदिर में आते थे सबसे पहले देखते थे सफाई का स्टैंडर्ड, अगर सफाई नहीं हो तो गुस्से होते थे। कई बार हमारे भक्त कहते हैं कि इसका मंदिर में सफाई का स्टैंडर्ड अच्छा है। तो पैरों का उपयोग किया मंदिर पहुंचने के लिए, हाथों का उपयोग किया मंदिर साफ करने, सिर का उपयोग किया क्या किस लिए? भगवान के सामने प्रणाम करने के लिए। तो इस प्रकार हमारी योजना ये होनी चाहिए कि आप मन बुद्धि इंद्रियों का उपयोग करो किसके लिए? भगवान की सेवा। तो आप पूछोगे स्वामी जी हमने पढ़ाई करनी है, बच्चों ने पढ़ाई करनी है, वो क्या करें? पढ़ना आप छोड़ दें? हमने नौकरी करनी है, दफ्तर जाना है, पैसे कमाने, वो छोड़ दें क्या? नहीं, वो भी कीजिए। भगवान कहते हैं गीता में यद करोषि देशी यदि दासी यदी कौन दिया तत् करोषि। अब पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई कीजिए, जितना करना कीजिए, पर इस भावना से क्या कि हमने भगवान की सेवा करनी है। अब व्यापार कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, तो इस भावना से हमने गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं तो धन की भी आवश्यकता है, पर हमने इस धन का उपयोग करना है पूरे खानदान को भगवत भक्ति के मार्ग में सफलता देने के लिए। तो दूसरे शब्दों में जो भी योग्यता है, तालीम है, बुद्धि है, उसका हम उपयोग कर सकते हैं किस लिए? भगवान की सेवा में। यह है भगवान का उपदेश। भगवान ने अर्जुन को यह नहीं कहा ओके अर्जुन छोड़ दो युद्ध के मैदान से मार जाओ। अर्जुन तो अनेक बहाने दे रहे थे, है ना, कि मैं इस युद्ध में नहीं लड़ना चाहता। भगवान ने कहा दसवा सर्वेश युद्ध मदन बोधी को मुझे अर्पण करते हुए मेरी खुशी के लिए तुम लड़ो। तो इसी प्रकार भगवान की खुशी के लिए हर कार्य होना चाहिए। मतलब भगवान है असली भोक्ता, भोक्ता नाम यज्ञ तपोसम सर्वलोक महेश्वर। ये है भक्त का ज्ञान। बहुत एक बार व्यक्ति सोचता है मैं हूँ हर चीज का भोक्ता, मैं मुझे मेहनत करके ये धन कमाया है, ये धन का उपयोग मुझे करना चाहिए अपनी बौद्धिक इंद्रिया तृप्ति के लिए और मेरे खानदान की इंद्रिया तृप्ति के लिए। अगर कोई हरे कृष्ण वाले आएंगे तो हम उन्हें भगा देंगे। ये बौद्धिक वादियों का भाव। और जिसके पास अध्यात्मिक ज्ञान है वो क्या सोचता है? इस सब भगवान की सुविधा से प्राप्त हुआ है, मुझे हर वस्तु का उपयोग करना भगवान की सेवा में। भगवान ऋषभदेव कह रहे हैं मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, पशु के समान उपयोग मत करो, इसका उपयोग करो किस लिए? तपस्या के लिए। तपस्या की शक्ति कहाँ से आती है? भक्ति की विद्या के पालन के द्वारा। तो आप ये पूछ सकते हो कि अगर हम तपस्या का पालन करेंगे तो हमें इसके बदले में क्या मिलेगा? ठीक प्रश्न है, कुछ लाभ है या नहीं? क्या लाभ?
कुछ
इसके बदले में क्या मिलेगा? भगवान ऋषभदेव ये उपदेश ही आपको दे रहे हैं। इस श्लोक में वो कह रहे हैं कि अगर आप भगवान की खुशी के लिए तपस्या करोगे, सबसे पहले तो आपका जो हृदय है वो शुद्ध हो जाएगा। इस वक्त हमारे हृदय में बहुत भारी मैल है है आपके हृदय में या ईस्ट दिल्ली में? नहीं है मैं तो कह रहा था ईस्ट दिल्ली में सब शुद्ध भगवत सच है झूठ तो मैल है हम सबके हृदय में मैल है थोड़ी या बहुत क्या मुझे कह रहे थे हमारा हृदय कोले से भी ज्यादा काला है आज आप शरीर के किसी अंग का एक्सरे करते हो तो काली निकलती है क्रोध दो मोह मद से भरा हुआ है तो ये हृदय को हमने ईश्वर बनाया है चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने शिष्यों को तो आदेश दिया था ग्रंथों की रचना करने के लिए पर स्वयं वो केवल 8 लोग छोड़ गए जिन्हें हम शास्त्र के नाम से जानते हैं पर इन 8 श्लोकों में पूरे वैदिक साहित्य का संदेश प्राप्त होता है अगर आप इन 8 श्लोकों को कंसस कर लो इन 8 श्लोकों का अध्ययन करो इनके विचारों को समझो तो पूरे वैदिक साहित्य के जो अर्थ है इन 8 श्लोकों में प्राप्त होता है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु भगवान थे 8 श्लोकों में पूरे वैदिक साहित्य का संदेश हमें दे गए हैं तो बिल्कुल पहले श्लोक में क्या कहते हैं महाप्रभु चेत दर्पण हरे नाम के उच्चारण का एक लाभ यह है कि जो हृदय की मैल है ये दूर हो जाती है तो उसी विचार को भगवान ऋषभ देव भी प्रकट कर रहे हैं इस श्लोक में वो कहते हैं जब आप तपस्या करोगे भगवान की खुशी के लिए तो इसके बदले में आपको क्या लाभ होगा सबसे पहला लाभ होगा आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा जैसे कि सरल उदाहरण अगर आपको ऊंचा बुखार हो और आपको कोई बड़ा अचल भोजन प्रसाद दे आपको टेस्ट आएगा आपकी आंखों में कैटरक है तो आपको ठीक नजर आएगा पर अगर बुखार कम हो जाए तो फिर टेस्ट आएगा तो उसी प्रकार क्योंकि इस समय हमारा भौतिक बुखार बहुत ऊंचा है 105 डिग्री इसलिए जब हम हरि नाम से जुड़ते हैं संतों की संगत में आते हैं आध्यात्मिक संदेश को सुनने बैठते हैं हमें पसंद नहीं आता हरि नाम में बैठते हैं तो नींद आ जाती है किताब खोलते हैं भागवत पढ़ने के लिए नींद आ जाती है तो टीवी देखते हैं तो नींद नहीं आती क्योंकि हमारी इसमें रुचि नहीं तो हमने हमारे क्योंकि हमारा हृदय अशुद्ध है इंद्रियां अशुद्ध है तो उन्हें हमें शुद्ध बनाना है वो कैसे संभव होगा यदि हरि नाम के उच्चारण से इसलिए संतों ने कहा है खली काले नाम रूप कृष्ण अवतार भगवान परम भगवान प्रकट होते हैं उनके दिव्य नामों के माध्यम से और इसलिए हमें बड़े ध्यान से हरि नाम का उच्चारण करना चाहिए जितने ध्यान से करोगे उतना अधिक लाभ इसका आपको पहुंचेगा तो यहाँ कह रहे हैं भगवान ऋषभ देव कि जो हमारा अशुद्ध हृदय है वो शुद्ध हो जाएगा और इसके बदले में तुम्हें आध्यात्मिक सुख प्राप्त होगा जो कि केवल बढ़ते ही जाएगा। प्रभुपाद जी देते थे उदाहरण कि अगर आप किसी सागर के किनारे में खड़े हो तो सागर की लहरों की आप देखोगे कोई सीमा है पर भक्ति के मार्ग में जब आप जुड़ते हो आनंद की कोई सीमा नहीं ये सीमा जो है बढ़ते जाती है भौतिक समाज में आप किसी कार्य को बार बार करो तो आनंद घटते जाता है पहली बार आपको भूख लगी है पहले चपाती खाओ तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा दूसरी खाओगे तो थोड़ा कम तीसरी और कम है पर आध्यात्मिक मार्ग में जितनी गहराई के साथ आप सेवा में जुड़ोगे उतना ही आपको और आनंद आएगा तो भगवान ऋषभदेव इसीलिए कह रहे हैं इस श्लोक में कि जब आप तपस्या का पालन करोगे भगवान की खुशी के लिए आपका हृदय भी शुद्ध होगा और आप नित्य जीवन प्राप्त कर सकोगे, जब आनंद में बिताओगे और ये जो आनंद है हमेशा बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख में अंतर है। भौतिक सुख शुरू में मीठा लगता है, बाद में कड़वा हो जाता है। जैसे भगवान गीता के 18वें अध्याय में तीन प्रकार के सुखों का वर्णन करते हैं। इससे पहले भगवान गीता में ये समझा बैठे हैं कि जब व्यक्ति भौतिक जीवन में आता है तो तीन गुणों के प्रभाव में आता है। जैसे कि जल का पानी, जल जब बारिश का पानी गिर रहा है, अगर आपने कोठी में टेरेस में उसे पकड़ लो बाल्टी में तो आपको बिल्कुल शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। तो जैसे ही वो बारिश का पानी पृथ्वी को छूता है गंदा जा रहा है, मिट्टी में मिल जाता। उसी प्रकार जैसे जीवात्मा भौतिक जगत में आते हैं वो तीन गुणों के प्रभाव में आ जाते हैं। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सत्वगुण का लक्षण है कि हमारे पास कम से कम आध्यात्मिक ज्ञान है, हम ये जानते हैं क्या असत है, क्या सत्य है, क्या होना चाहिए क्या नहीं। तमोगुण में क्या भाव रहता है, अधिक 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 परिश्रम। जब आपको आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया जाए तो आप कहोगे स्वामी जी सॉरी नो टाइम। एक समय प्रभुपाद जी ने एक आर्टिकल लिखा था सॉरी नो टाइम। तो उस आर्टिकल में प्रभुपाद जी ने समझाया कि वह एक समय एक प्रसिद्ध व्यक्ति को मिलने गए थे। स्वामी जी उसको प्रभुपाद ने उन्हें प्रचार किया। वो प्लानिंग कमीशन, भारत की प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे, चेयरमैन। ये बहुत पुरानी कथा है, 50 साल पुरानी, 60 साल। तो स्वामी जी वी आर वेरी बिजी सॉरी नो टाइम। अगले दिन उसका हार्ट अटैक हो गया। तो प्रभुपाद ने कहा सॉरी नो टाइम, प्रभुपाद जी ने समझाया। तो जो राजोगुण के प्रभाव में है उनकी रुचि रहती है केवल अधिक परिश्रम में, और वो अपने परिश्रम का करने जो नतीजा है उसको खुद ही भोगना चाहते हैं। वो तमोगुण में आसीपन, कोई रुचि नहीं, केवल विश्राम विश्राम करना बस। तो अलग अलग साधन हैं सुख के, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। सात्विक सुख के विषय में भगवान गीता में कहते हैं शुरू में कड़वा बाद में मीठा, और जिसके द्वारा आत्म साक्षात्कार का ज्ञान बढ़े। और राजसिक सुख के विषय में कहते हैं शुरू में मीठा बाद में कड़वा, जो इंद्रिय तृप्ति द्वारा प्राप्त हो। तो जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, जब हमें ये सूचना प्राप्त होती है हमारा जाप करो, चाणियों का पालन करो, ये करो वो करो, शुरू में हमें ये सब कड़वा दिखता है, कहाँ फंस गए। फिर जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हो तो फिर आप समझ पाते हो क्या, फिर आप खुद ही अनुभव करते हो आनंद। ये थोड़ी कि धन दे कर लोग जाप कर रहे हैं। प्रभुपाद जी एक समय डायलिस अमेरिका में लेक्चर दे रहे थे। प्रभुपाद ने कहा व्हेन द क्रिश्चियंस केम टू इंडिया दे कन्वर्टेड पीपल बाय ब्राइबिंग। क्रिश्चियन लोग भारत में आए और आज भी लोगों को धन देकर, धन का लालच देकर उनके धर्म को बदलते हैं। वो कहते हैं तुम्हारे बंधन में तुमको शिक्षा मिल रही है क्या, नहीं हम तुम्हें फ्री शिक्षा देंगे, बनो क्रिश्चियन, जीसस क्राइस्ट को मान ले। तो मुसलमान लोग भारत में आए थे, उन्होंने तलवार के बल पर लोगों के धर्म को बदला। तो प्रभु जी ने कहा मैं तो बूढ़ा व्यक्ति हूँ, तुम्हारे देश में आया हूँ ना कुछ धन देकर ना तलवार, और जब भी कृष्ण भक्ति को स्वीकार कर रहे क्यों, क्योंकि भगवान सर्वर आकर्षक है सब भगवान। तो जब आप भक्ति की विधियों का पालन करते हो तो उसके बदले में आपको जो सुख प्राप्त होगा वो क्या है, आध्यात्मिक सुख, जो केवल केवल क्या बढ़ते ही जाएगा। बहुत एक वाली व्यक्ति ये समझ नहीं पाते कैसे संभव है तुम एक ही नाम का उच्चारण करते हो रोज और थकते नहीं। आपसे पूछते हैं लोग अक्सर पूछते बोलते एक ही नाम का उच्चारण करके रोज थकते नहीं तो क्या है उत्तर नहीं क्यों क्योंकि भगवान के नामों में पूरी शक्ति है भगवान के नामों में कोई अंतर नहीं और जितने ध्यान से आप जाप करोगे उतना ही अध्यात्म आकर्षण बढ़ेगा और बहुत ही आकर्षण घटेगा। तो भगवान ऋषभदेव जो शिक्षा दे रहे हैं ये उसने पूरे मानव समाज लिए हैं और प्रहलाद महारी ने ये भी कहा है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान को अनुकूल करना कब आरंभ कर देना चाहिए छोड़ी चाहिए हमें 5 साल की आयु से आरंभ कर देना चाहिए। हम 2.5 साल की आयु से बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं हर प्रकार की शिक्षा देंगे पर आध्यात्मिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं। तो आज अगर समाज में किसी चीज की कमी है तो किस विषय की कमी है दिव्य ज्ञान की कमी है। और आज आप देख रहे हो बहुत ही समाज में जैसे प्रभु जी तात्पर्य में कहते हैं कि क्लेश ही क्लेश है कष्ट ही कष्ट है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भौतिक संसार में किसी योजना चमत्कार द्वारा दुखों से बचकर सुखी सुख अनुभव करूंगा ये भूल है। हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं विज्ञान का क्या उद्देश्य है विज्ञान का प्रयास रहता है कष्टों को घटाना। जैसे कि आजकल कई दुकानें हैं विश्व पश्चिम देशों में उनको कहते हैं एंटी एजिंग शॉप्स जिसमें वो मसाला दिया जाता है जिससे आप बुढ़ापे पर को छुपा सको आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो आप उनको रंग कर सकते हो आपके चीक रिंकल हो रहे हैं तो उनको प्लास्टिक सर्जरी कर लेंगे आंखों से दिखता नहीं है तो आपको कॉन्टैक्ट लेंसेस दे देंगे भगवान मुझे अपनी मुक्ति की चिंता नहीं है मैं तो आपकी कृपा से सीख समझ गया हूं जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। मुझे उन लोगों के लिए दुख है जो कि दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। भक्त के सामने एक समस्या यह है एक तरफ जो भक्त हैं जो भक्ति में जुड़ते हैं वो आनंद ही आनंद में है क्यों क्योंकि वो जानते हैं कि वो शुद्ध मार्ग में जुड़ गए हैं और सेवा के द्वारा भी आनंद ही आनंद अनुभव करते हैं। पर दूसरी तरफ से भक्तों के मन में दुख शोक रहता है जब वो देखते हैं बदजीव जुड़ रहे हैं उन कार्यों में जिनका भक्ति से कोई संबंध नहीं हो तो भक्त एक तरफ से खुश रहता है और दूसरी तरफ से दुखी साइमल्टेनियसली हैप्पी एंड अनहैप्पी। वो खुश है कि वो भक्ति में जुड़ा है दुखी है कि वो लोगों को तड़पते हुए नहीं देखना चाह रहा। इसके लिए भक्तों में यही भाव रहता है हम किस प्रकार से लोगों का उद्धार करें। तो आपको अगर असली आनंद चाहिए फिर हमें भक्ति योग के मार्ग में जुड़ना चाहिए और जो व्यक्ति मनुष्य जीवन प्राप्त करके केवल इंद्र तृतीय कार्य में जुड़ते हैं उनका जीवन क्या है पशु के समान। एक बड़े प्रसिद्ध भक्त ने कहा है मनुष्य जन्म पाया मैंने मनुष्य जीवन तो प्राप्त कर लिया है राधा कृष्ण नहीं भाज्य पर मैंने राधा कृष्ण की उपासना नहीं की इसलिए जानिया चुनिया पीछा खाई हूं इसलिए मैं जानबूझकर क्या पी रहा हूं पीछा। तो आज लोगों की स्थिति यह है, लोग जहर पी रहे हैं, आप आते हो और कहते हो कि भगत का अमृत पीजिए, कहीं तो आपका अमृत का संदेश स्वीकार कर लेते हैं और कई क्या कहते हैं हमें जहर पीना, उसी में आनंद है। ये है अज्ञानता का उदाहरण। जब आप प्रचार भी करते हो, ये नहीं कि हर व्यक्ति आपका साथ देगा, जैसे कि आप चैतन्य भागवत में पढ़ते हो, चैतन्य महाप्रभु जी के आदेश के अनुसार भगवान नित्यानंद और हरिदास ठाकुर की जोड़ी बनी जो घर घर जा रहे थे लोगों का उद्धार करने के लिए। तो कई घरों में वो गए, कई घरों में वो जाते थे, लोगों का बड़े आदर से स्वागत करते थे, कहते थे सन्यासी महात्मा आ गए हैं घर को पवित्र बनाने के लिए, उनको बिठाते थे, उनके संदेश को स्वीकार करते थे, भोजन खिलाते थे। पर कई जगह वो जाते थे तो लोग कहते थे दो पागल आ गए, निमाई ने इनको भी, निमाई तो खुद पागल है, इन्हें भी पागल बना दिया। और कई जगह में वो जाते थे लोग कहते थे सन्यासी आ गए, जासूस आ गए हैं सन्यासी के रूप में, हमारे घर में देखेंगे क्या है, फिर बाद में आएंगे चुराने के लिए। तो अगर भगवान नित्यानंद हरिदास ठाकुर को यह आरोप लगा सकता है तो हम लोग की तो बात ही छोड़े, हमें तो फिर जूती खाने चाहिए। तो जब आप प्रचार करते हो भगवान के संदेश को घर घर ले जाते हो, ये मत सोचेगा कि हर व्यक्ति आपको साथ देगा, कई देंगे और कई, और अगर कोई बेइज्जती भी कर देता क्या सोचना, वही उदाहरण, अगर भगवान नित्यानंद हरिदास की बेइज्जती हो सकती है तो हमारी क्या सकती है। तो ये जो दिव्य संदेश है ये है हमारे सुधार के। तो अगर हम शुद्ध भक्ति के मार्ग में जुड़ते हैं, वहां में कैसे जुड़ना चाहिए, ये ज्ञान भी हमें भगवान ऋषभदेव जी, रूपक गोस्वामी जी देते हैं। रूपक गोस्वामी जी ने हमें अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ दिए हैं, जिनमें दो ग्रंथों का अनुवाद श्री प्रभुपाद जी ने किया अंग्रेजी भाषा में। कौन से हैं वो दो ग्रंथ? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, नेक्टर ऑफ डिवोशन, जो हिंदी में है भक्ति रसामृत सिंधु, और श्री उपदेश। तो श्री उपदेश में रूपक गोस्वामी जी हमें उपदेश देते हैं क्या है भक्ति के लिए अनुकूल, क्या है पति को उत्साह निश्चय धैर्य तत्पर कर्म प्रवर्तन। कहते हैं कि हमें भक्ति के मार्ग में उत्साहित होना चाहिए, क्यों नहीं, किसकी सेवा कर रहे हो, स्वयं भगवान की सेवा कर रहे हो। और भक्ति के मार्ग में जितने ध्यान से आप जाप करोगे, जितने ध्यान से सेवा करोगे, उतना ही उन्हें आनंद मिलेगा। तो संक्षेप में यहाँ भगवान ऋषभदेव पूरे मानव समाज को, खास करके इस तरह के भक्तों को बड़ा महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं आप लोगों को? पहला, पशुओं जैसे मत जीवन बिताओ। अगर आप सोचते हो इंडिया तीर्थ लक्ष्य है, ये सुविधा तो पशुओं को भी प्राप्त हो रही है ना, पशु तो आपसे भी ज्यादा तेज है इंडिया तीर्थ में, तो फिर क्या, अगर हम इंडिया तीर्थ में नहीं जुड़े, अगर ये हमारा स्मरण नहीं रहेगा, ये हमारा चिंता नहीं रहेगा, तो किस विषय का चिंतन होना चाहिए? क्या कहा भगवान ने, तपस्या का पालन करो। तपस्या का पालन कर, ये अर्थ नहीं कि आपको समाज त्यागना है, इसका ये अर्थ है जो प्रतिकूल कार्य हैं केवल उनको त्याग रहे, और जो दूसरे कार्य हैं उनको शुद्ध वातावरण में, शुद्ध भावना से, शुद्ध चेतना से निभाना है बस। और इसके द्वारा क्या लाभ होगा, आपको आनंद मिलेगा, और ये जो आनंद है क्या केवल बढ़ते ही जाएगा। तो भौतिक क्षेत्र में आनंद घटते जाता है, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में बढ़ते जाता है। ये जो संदेश है इसका उपयोग कैसे किया जाए? एक समय प्रभुपाद जी को निमंत्रण दिया था भगवद गीता के एक सभा में उपदेश देने के लिए। उस सभा में कई मायावादी संत भी आए थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवत गीता को अगर समझना है तो हमें कृष्ण का भक्त बनना पड़ेगा, क्योंकि भगवत गीता को आप समझ सकते हो भक्तों के सहयोग से। भगवान स्वयं कहते हैं चौथे अध्याय में, मैं ज्ञान तुम्हें देना हूँ क्योंकि तुम मेरे मित्र हो और भक्त हो। फिर आगे प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर तुम्हें भक्त बनना है तो सबसे सरल उपाय है यह महामंत्र का उच्चारण। तो आप कहोगे हमारे में तो तपस्या की शक्ति नहीं, हमारे में तो कोई योग्यता नहीं है इंद्रियों को वश में लाने के लिए। पर आप योग्यता प्राप्त कर सकते हो अगर हम अगर प्रयास करो। आप दामोदर रस के महीने में, दामोदर के महीने में रोज दामोदर रस का उच्चारण कर रहे थे, और दामोदर लीला में आप क्या देखते हो कि जब हनुमान ने देखा कि मेरी माता इतना प्रयास कर रही है मुझे बांधने के लिए, भगवान ने क्या किया, बांधने की सुविधा दी। तो इसी प्रकार जब भगवान देखते हैं कि आप भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से प्रयास कर रहे हो उनके आदेश का पालन करने के लिए, गीता की शिक्षा के आधार पर जीवन को बिताने के लिए, तो भगवान आपको सफलता देते हैं। और भगवान अंतर्यामी हैं, हर कार्य के साक्षी हैं, और इसलिए जो भक्ति की विधियां हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। और श्री प्रभुपाद जी ने हमें वही शुद्ध संदेश दिया है जो भगवान ने दिया था अर्जुन को, और हमें उसी विचारधारा से स्वीकार करना चाहिए जैसे अर्जुन ने किया। जैसे 18वें अध्याय में भगवान ने पूछा, क्या तुम्हारी ज्ञानता दूर हो गई है, क्या तुम्हारा मोह गुम दूर हो गया है? अर्जुन ने कहा, हे अच्युता, अच्युता मतलब जो कभी गलती नहीं करता, इन भगवान के अनेक नामों में एक नाम है अच्युता। अर्जुन ने कहा, हे अच्युता, मेरी अज्ञानता दूर हो गई, मेरा मोह भौतिक आकर्षण दूर हो गया है, अब मैं संपूर्ण रूप से आपकी पूरी शिक्षा को स्वीकार करने को तैयार हूं। ये होना चाहिए हमारा भाव। अब गीता पढ़ते हो ये नहीं गीता का एक श्लोक स्वीकार करोगे और दूसरा नहीं स्वीकार। जैसे तीसरे अध्याय में भगवान कहते हैं कर्मादि वादी कारण से, तो आप कहो भगवान कह रहे हैं अपने भौतिक कर्मों को करो वही तो हम कर रहे हैं। पर आगे भगवान कहते हैं माँ परेश फल मुझे दो, वो लाइन है अच्छी नहीं लगती, पहली लाइन बड़ी मीठी है, फिर आगे करो कड़वा पड़ता है। जैसे ये श्लोक सर्वधर्मा पड़ता है, हम तुम सर्व पाप मोक्ष। कई भक्त कईयों को ये श्लोक अच्छा नहीं लगता, सर्वधर्मा पड़ता है, अरे हमें क्या मिलेगा। तो हमें संपूर्ण रूप से भगवान की जो शिक्षा है उसको स्वीकार करना चाहिए, और अगर आप श्रद्धा से नियमों के आधार पर पालन करोगे तो अवश्य ही इस मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो आप सब भक्तों से यही निवेदन है, इस शिक्षा को अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो आप सब जनरेटर तो सब भक्तों से यही निवेदन है, गंभीरता से इनसे अपनाइए और अपने जीवन को सफल बनाइए। और हमारा लक्ष्य केवल ग्रंथ का वितरण नहीं, हमारा भाव होना चाहिए कि हम ग्रंथों का अध्ययन भी करें। प्रभुपाद जी कहते थे जब भगवान देखते हैं कि हम उनके शास्त्रों को पढ़ रहे हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं, क्यों? वो कहते हैं यहाँ एक भक्त है जो मुझे समझना चाहता है। हमारा प्रयास होना चाहिए क्या, हम ग्रंथों को पढ़े भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। आप ऐसे कितने भक्त हो जो कि रोज इन ग्रंथों को पढ़ते हो? अगर मैं पूछूं कितने भक्त जो रोज अखबार पढ़ते हो, पूछे कि क्रिकेट मैच के समय क्रिकेट का स्कोर कौन है, तो प्रयास कीजिए रोज पढ़ने के लिए ग्रंथों को, खास करके गीता और भगवत।